नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए रुपए पैसे का ये एपिसोड। जिस दौर में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में काफी उथल पुथल और चिंताजनक हालात बने हुए हैं, उनमें मंगलवार को पेश बजट ने एक तरह से सबका ख्याल रखने का आश्वासन दिया है। बजट के कुछ अहम बिंदुओं को देखते हुए ये साफ लगता है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं में अब शायद कुछ बदलाव आया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में चुनावी मुद्दा बने, लेकिन प्रकारांतर से उपेक्षित सवालों की सुध लेती दिखी है। देश में बेरोजगारी की चुनौतियों से जूझने के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें अगले 5 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी हासिल करने वालों को सरकार उनके पहले महीने के वेतन पर अनुदान के रूप में 15,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि देगी। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्ष में शीर्ष 500 कंपनियों में प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप का मौका देने की बात की गई है, जिसके तहत युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। जाहिर है, लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने की कोशिश की गई है। आमतौर पर इस पर सबकी नजर रहती है कि बजट में मध्य वर्ग के लिए क्या कोई राहत है। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने नई कर व्यवस्था की दरों में जो बदलाव किया है, उससे लोगों के 17,500 रुपये तक बच सकते हैं और अब 3 लाख रुपये की आय तक कोई आयकर नहीं देना होगा। अप्रत्यक्ष कर की दरों में बदलाव के बाद अब कैंसर की कुछ दवाएं, मोबाइल फोन, सोना चांदी के दाम में कमी आने की संभावना है, मगर आम लोग जिस महंगाई से जूझ रहे हैं उससे कितनी राहत मिलेगी, इस मसले पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किए गए नए प्रावधानों से मध्य वर्ग को लाभ मिल सकता है। इस तरह कर ढांचे के नए स्वरूप से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा लोगों को पैसा बचाने के बजाय खर्च करने का विकल्प चुनने की ओर प्रवृत्त करने की है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के नियमों में हुए बदलाव का असर इस रूप से सामने आया कि बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए। एक उम्मीद ये थी कि पिछले कुछ समय से रेल यात्रा के समूचे तंत्र को लेकर जितने बड़े पैमाने पर सवाल उठे थे, तो सरकार बजट में शायद इस पर ध्यान दे। मगर विचित्र ये है कि रेलवे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। इस बजट में खासतौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जिस तरह अलग से बड़े ऐलान किए गए हैं, उसने सबका ध्यान खींचा है। खासतौर पर बिहार के लिए 26,000 करोड़ की बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। ये सभी जानते हैं कि मौजूदा सरकार के गठन में जद और तेलुगु देशम की क्या भूमिका रही है। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे सरकार बचाओ बजट कहा है। बहरहाल, सरकार अगर इसे उम्मीदों का बजट बता रही है तो आने वाले वक्त में ये आश्वासन कसौटी पर रहेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।